परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है अभी है मेरे साथ। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, क्षणों में संग रहा है अभी है मेरे साथ। जिसने हमारे हाथ खुद का जान दिया, जिसने हमारे हाथ खुद का जान दिया और हमारी जिंदगी को जीवन दान दिया। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है अभी है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप भी अपने प्रियों के साथ रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैं उन सभी नए मित्रों का भी स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु, जिसके लिए यह संपूर्ण सृष्टि है और जिसके द्वारा यह संपूर्ण सृष्टि है, उसे यह अच्छा लगा कि बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। यह काम उसने कैसे किया? उसने क्रूस पर दुख उठाकर मृत्यु सही और सिद्ध हुआ। उसने स्वर्ग में बैठे बैठे यह काम नहीं किया, और यह भी नहीं कि उसने बाइबल पढ़कर हमें स्वर्ग आने का मार्ग खोजने की अनुमति दी या हमें कहा, मैं तुम्हें पुत्र होने का अधिकार दे दूंगा। जी नहीं, वह मनुष्य बनकर आया और हर एक मनुष्य के स्थान पर मेरे और आपके बदले में मृत्यु का स्वाद चखा, क्योंकि उसने मेरे लिए क्रूस पर दुख उठाया और मर गया। इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ। उसने मेरे अकेले के लिए ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए भी यह काम किया है। इन्हीं बातों को हमने देखा है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए सामर्थ और सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए, इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम दूर में रहकर भी आपके वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से एक साथ कर सकते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब आपका वचन उन तक पहुंचे तो आपका वचन उनके जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। आप उनके जीवन में अपने शांति और आनंद प्रदान करें। जो निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, आप उनकी भी सहायता करें। आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद को हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद, जहां पर लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। ध्यान दीजिए, पवित्र करने वाला, पवित्र का अर्थ वास्तव में वह नहीं है जो हम प्रायः सोचते हैं। मैं वर्षों तक सोचता रहा कि पवित्र का अर्थ क्या है, एक अच्छा बच्चा बनना, परंतु पवित्र आत्मा के संबंध में इस शब्द का अर्थ है हम में परमेश्वर का काम, कि हम पृथ्वी पर उसकी इच्छा के अनुसार प्रतिनिधि बने। यह मुक्ति प्राप्त मनुष्य के मन में पवित्र आत्मा का कार्य है। दूसरी ओर प्रभु यीशु के मनुष्यत्व के संबंध में पवित्र का अर्थ शोधन नहीं है, यह दशा नहीं, एक स्थान है। वह धर्मी था और उसने अधर्मी मनुष्य का स्थान ले लिया कि हमें परमेश्वर से मिला दे। अब वह हमें परमेश्वर के परिवार में ले आया है, इसलिए हम पढ़ते हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। परमेश्वर के परिवार में वह हमें भाई कहने से नहीं लजाता है। मैं उसे भाई कहने का साहस नहीं करूंगा, परंतु वह हमें परमेश्वर के परिवार में ले आया है। जी हाँ, वह अनेक भाइयों में पहलौठा है, वह परिवार का मुखिया है, वह हमें भाई कहता है, क्योंकि हम उसमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए हैं। मेरे मित्रों, यह कहना कि परमेश्वर सबका पिता है और हम सबका भाई है, इस पद के द्वारा झूठा सिद्ध होता है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। यह पद भजन संहिता 22 का संदर्भ है, जो क्रूस का एक महान भजन है। भजन संहिता 22 का प्रथम भाग मसीह के अपमान का उल्लेख करता है और इसमें वे 7 वचन हैं जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर से कहे थे। पद 22 से आगे प्रभु यीशु का महिमान्वन है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। मेरे विचार में हम इसे केवल इब्रानी भाइयों तक ही सीमित रखें, क्योंकि यह इब्रानी में लिखी गई थी। यहां सभा को आप कलीसिया समझने की भूल ना करें। अब यशाया 8 अध्याय उसके 17 और 18 का एक संदर्भ को हम देखें। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह, देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। यह पद प्रकट करता है कि पवित्र आत्मा पवित्र धर्मशास्त्र का अनुवाद करता है। आज कुछ विद्वान भविष्यद्वक्ताओं का अर्थ निर्धारण करते समय उसमें प्रभु यीशु का स्थान नहीं रखते हैं। मैं जब यशाया की पुस्तक 8 अध्याय उसके 17 और 18 को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लेखक यशाया के पुत्रों के बारे में कह रहा है, परंतु पद 13 में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के विषय में कह रहा है। अतः वह टीकाकार जो भविष्यवाणियों में से प्रभु यीशु को अलग कर दे, वह नए नियम में दिए गए पवित्र आत्मा के अर्थ का खंडन करता है। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 17 पद में प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद कहा था, मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे। जी हाँ, वह अपने शिष्यों को भाई कह रहा था जो यहूदी थे। मैं इस पर अधिक बल देता हूं क्योंकि हमारे लिए यह ध्यान रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वे सब जिन्हें यह पत्र लिखा गया था वे इब्रानी थे। इससे मुझे सही अर्थ व्यक्त करने में सहायता मिलती है, जो मेरे विचार में हमारे मन में स्वीकार करने के योग्य होगा। आगे लिखा है इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय उसके 14 पद में, इसलिए जब के लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यह पद प्रभु यीशु के देह धारण पर ध्यान केंद्रित करता है। लिखा है इसलिए कि जब लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। प्रभु यीशु का आगमन उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, परंतु उन्हें उसे पहचान लेना था, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं ने स्पष्ट कहा था कि उसका आगमन कैसे और कहां होगा। जॉर्ज मैकडॉनल्ड ने कहा कि वे एक राजा की प्रतीक्षा में थे कि उनके शत्रु का नाश करके उनका सम्मान बढ़ाए, परंतु वह तो एक बालक रूप में आया जिसने एक स्त्री को रुलाया था। क्योंकि हम लहू और मांस के बने हैं, इसलिए उसने भी लहू और मांस को अपनाया था और आपके और मेरे समान जन्म लेकर संसार में आया। आगे हम पढ़ते हैं, ताकि मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दे। जी हाँ, प्रभु यीशु के जन्म ने किसी का उद्धार नहीं किया, उसकी मृत्यु ने उद्धार किया। उसकी मृत्यु हमारा उद्धार कराती है, न कि उसका जन्म और जीवन। उसकी मृत्यु आत्मिक और अनंत मृत्यु से हमारी मुक्ति और उद्धार लेकर आई है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। मेरे विचार में इसका सबसे अच्छा अर्थ ई शुइलर इंग्लिश व्यक्त करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था में पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करने वाला निश्चय ही मारा जाए। पहले तो शैतान मनुष्य के पाप का कारण था, और यद्यपि वह छीनने वाला है, वह उचित दावा ही करता है कि पापी को मरना होगा। उसके पास अधिकार है, सामर्थ है कि पापी से पाप की मजदूरी मांगे। इसी कारण सब मनुष्य, क्योंकि वे पापी हैं, मृत्यु के भय के कारण दासत्व में हैं कि उसकी सेवा करें, जो शैतान की सेवा है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय के 16 पद में आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। पुराने नियम में मसीह स्वर्गदूतों का स्वभाव अपनाता था जब वह यहोवा का दूत होता था। इस बात को इब्रानी भली भांति समझते थे। प्रभु यीशु जब स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आया, तब वह स्वर्गदूतों को पार करके पतित मनुष्यों में आया और अब्राहम का वंशज बना, जिसकी तैयारी परमेश्वर ने आदम और हवा के समय से ही कर ली थी। परमेश्वर ने उस समय कहा था कि स्त्री से एक संतान उत्पन्न होगी। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा था कि वह अब्राहम का वंशज होगा, और आगे चल करके हम देखते हैं कि वह यहूदा के गोत्र में जन्म लेगा और दाऊद के परिवार से होगा, जो इसराइल जाति से है। उसका जन्म कुंवारी से होगा। परमेश्वर ने अनेक मार्ग चिन्ह दिए थे कि ज्योतिषी ही नहीं, हर एक मनुष्य यीशु के जन्म के समय बेतलेहम का मार्ग पहचान ले। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रभु यीशु मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 7 पद में हम पढ़ते हैं, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। विंसेंट उसकी समानता के बारे में कहते हैं, इतना अधिक निकट कि पाप के श्राप के चिन्ह अत्यधिक स्पष्ट दिखते थे। गरीबी, परीक्षा, उग्र एवं अयोग्य मृत्यु के चिन्ह। प्रभु यीशु राजा के महल में जन्म ले सकता था, परंतु वह कंगाली अर्थात गायों की चरनी में, गौशाला में जन्म लिया और रखा गया। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य पर पाप के प्रकोप के बारे में कुछ जाने। इसे आप कहां देखते हैं? इसे आप गरीबी में देखते हैं, परीक्षाओं में देखते हैं, इसे आप दुखदायी अयोग्य मृत्यु में देखते हैं। यह पाप का प्रदर्शन ही तो है। मेरे मित्रों, निर्दोष मनुष्य को कष्ट में देखना एक त्रासदी है। एक 80 वर्षीय महिला को एक युवक ने बड़ी निर्दयता से मार डाला। कैसी भयानक बात है। किसी ने कुछ नहीं कहा और न ही कुछ किया। प्रभु यीशु एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। इस संसार में आकर परमेश्वर को गरीबी का अनुभव हुआ। एक बार विश्व युद्ध दो के समय में रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो कंडक्टर ने आकर वहां पर बैठे लोगों से कहा, अपनी सीट नहीं छोड़ना क्योंकि स्टेशन पर कुछ यात्री एक सप्ताह से फंसे हुए हैं और यदि वे आपकी सीट पर बैठ गए तो आपको परेशानी हो जाएगी। लोग गाड़ी चलने के बाद में कंडक्टर से पूछने लगे, वहां समस्या क्या थी। उसने बताया कि वहां कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार समुद्र पार कर चुके हैं और कुछ यहीं पर रुके हुए हैं। जैसे एक महिला का पति तो चला गया और वह वहीं पर फंसी हुई है। वे समुद्र पार जाने के लिए तरस रहे हैं, उन्हें गाड़ी में सीट नहीं मिल रही है। एक स्त्री ने वहीं बच्चे को भी जन्म दिया। बच्चा अब बड़ा हो गया है और मैं आशा करता हूं कि किसी ने उसे प्रभु यीशु के चरणी में जन्म लेने के बारे में बताया होगा। मेरे मित्रों, रोम के राजा अगस्तुस ने आज्ञा निकाली थी कि उसके राज्य में हर एक मनुष्य अपने अपने गांव जाकर जनगणना में नाम लिखवाए जिससे कि वह उनसे कर वसूल कर पाए। मरियम बेतलहम गांव की थी इसलिए उसे नाम लिखवाने के लिए वहां पर जाना पड़ा था। वह गर्भवती थी और उसका अंतिम समय भी था। वहां भीड़ इतनी अधिक थी कि किसी भी धर्मशाला में उन्हें ठहरने का स्थान नहीं मिला, अतः उन्हें गौशाला में ठहरना पड़ा और मरियम ने यीशु को वहीं पर जन्म दिया। इसी कारण वह स्टेशन पर जन्म लेने वाले शिशु के साथ सहानुभूति दिखा सकता था, निभा सकता था। क्या मैं गलत कह रहा हूं? प्रभु यीशु ने मनुष्य का शरीर धारण किया था इसलिए वह हमसे सहानुभूति निभा सकता है। आप जहां भी हो वह आपको देखता है और आपकी दशा को समझता है। इसलिए नहीं कि वह परमेश्वर है परंतु इसलिए कि वह मनुष्य है। वह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हम किन हालातों से गुजर रहे हैं, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। हो सकता है कि आप कर्ज से डूबे हुए हैं, आप बीमार हैं, नौकरी की तलाश में हैं। वह सब कुछ जानता है। आज भी संसार के अनेक देशों में गरीबी बहुत अधिक है। मेरा मन शरणार्थियों के लिए रोता है। हम इन किस्मत के मारों को अपराध का दोष नहीं दे सकते। कुछ लोग तो 1947 से ही कष्ट भोग रहे हैं। उनका जीवन स्तर दयनीय है। यीशु के समय में भी गरीबी का भयानक साया था परंतु उसे यही भाया कि अपने भाइयों के सदृश बने। वह गरीबी में आया था। यीशु का परिवार बहुत गरीब था। उसका देश रोम राज्य के अधीन था, गुलामी में था। वह हर एक बात में अपने भाइयों के समान बना। मेरे मित्रों, यदि आप यीशु को बाल्यकाल में बच्चों के साथ खेलते हुए देखते तो कभी भी नहीं कहते कि वह परमेश्वर का पुत्र है। चित्रकार तो उसे असामान्य दर्शाते हैं परंतु वह वास्तव में मोहल्ले का ही एक मैला कुचैला लड़का था। वह अपने भाइयों के समान था, उनके साथ खेलता और कूदता था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की चर्चा करते समय उसके मनुष्यत्व को कम करने का खतरा बना रहता है। मैं कहता हूं कि वहां के बच्चों के पास आज भी अधिक सुख सुविधा नहीं है। तो यीशु के समय वहां की दुर्दशा की कल्पना कीजिए। यही उसकी पृष्ठभूमि है। वह निर्जल भूमि से उगने वाली जड़ था। आपका ना तो कोई ऐसा विचार है और न ही ऐसा कोई दुख संकट है जिसका अनुभव उसे ना हो। इसी कारण वह एक विश्वास योग्य और दयालु महायाजक है। हम यहां पर पढ़ते हैं जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रभु यीशु ने हमारे लिए दया आसन तैयार किया है, हम निकट आ पाएं, और मेरे मित्रों हमें जिसकी आवश्यकता है वह है दया। परमेश्वर के पास अपरंपार दया है, क्योंकि प्रभु यीशु दया का आसन है। आप वहां जाकर जितनी दया चाहिए ले सकते हैं। मुझे तो बहुत अधिक दया की आवश्यकता है और मैंने बहुत अधिक दया काम में भी ली है, परंतु अब भी उसके पास आपके लिए बहुत दया है। प्रभु यीशु ने मनुष्य के पाप के लिए दया का आसन स्थापित किया है, उसने दया का आसन स्थापित कर दिया है, और यही वह स्थान है जहां से आप दया प्राप्त कर सकते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या आपको दया की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो आज ही आप प्रभु यीशु के पास आ जाएं, क्योंकि उसके पास दया है और वह सबको देना चाहता है, और वह चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उस दया को पाकर अपने जीवन में शांति को प्राप्त करे। मेरे मित्रों, वही व्यक्ति आपको दया दे सकता है जो उन परिस्थितियों से होकर के गुजरा है, उन अनुभवों को उसने जाना है, और प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में उन सारी बातों को जानता है। वह भी उसी परिस्थितियों में से होकर के गुजरा है, और इसीलिए वह आपकी सहायता कर सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आप उस दया आसन के पास अवश्य ही आएंगे और अपने जीवन में आत्मिक शांति और आनंद को प्राप्त करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तेरी गली तेरा शहर, तू शाम है तू है सहर, तेरी गली तेरा शहर, तू शाम है तू है सहर, सजना तू यो तू मैं नहीं, मुझ विच दिसदा